नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा से हावड़ा गुवाहाटी के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री आज शाम असम का दौरा करेंगे। दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो माओवादी ढेर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा संघर्ष समाप्त करने पर अपनी 20 सूत्री शांति योजना के दूसरे चरण का नेतृत्व करने के लिए एक नए शांति बोर्ड के सदस्यों की घोषणा की। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन में पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश का पूर्वानुमान लगाया और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन से हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने गुवाहाटी हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी वर्चुअल रूप से झंडी दिखाई। पूरी तरह से वातानुकूलित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को किफायती किराए पर हवाई यात्रा जैसा अनुभव प्रदान करेगी। इससे लंबी दूरी की यात्राएं तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनेंगी। 16 आधुनिक कोच वाली इस ट्रेन की कुल क्षमता 823 यात्रियों की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ट्रेन सेवा आम यात्रियों, छात्रों, पेशेवरों, प्रवासी श्रमिकों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी।
देश में पहली बार शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं के साथ तेज और आरामदायक लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार की गई है। 16 कोच वाली इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आरामदायक स्लीपर बर्थ, ऑटोमेटिक दरवाजे, कवच सुरक्षा प्रणाली, आधुनिक शौचालय, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल यात्रा सूचना प्रणाली जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इस ट्रेन का किराया थर्ड एसी के लिए 2,300 रुपये, सेकंड एसी के लिए 3,000 रुपये और फर्स्ट एसी के लिए 3,600 रुपए रखा गया है। इस ट्रेन में 823 यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं और यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है। गुवाहाटी से चलने वाली ट्रेन में यात्रियों को असम के व्यंजन परोसे जाएंगे, जबकि कोलकाता से चलने वाली ट्रेन में बंगाल का पारंपरिक भोजन दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान क्षेत्रीय सांस्कृतिक अनुभव भी मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
हमारे संवाददाता ने यात्रा कर रहे कुछ यात्रियों और विद्यार्थियों से बातचीत की। इन लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रा करने का मौका मिलना सौभाग्य की बात है।
मेरा नाम ममता सुल्ताना है और मैं केंद्रीय विद्यालय मालेगांव में पढ़ती हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम वंदे भारत में बैठने का मौका मिला है और ऑनेस्टली बोलूँ बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, डिजाइन, कलर, वो थीम जो है सब बढ़िया लगता है, सो आई फील लकी।
मेरा नाम पाहिदा है सर, मैं फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर में बैठी हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और इधर ऑटोमेटिक डोर्स एंड ऑल बहुत सारे ऑटोमेटिक है। ऑनेस्टली बताओ, हम लोग को फर्स्ट बनता है कि हम लोग इसको साफ सुथरा रखे एज कम्पेयर टू अदर। इधर में आके हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यह जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है।
इसके बाद प्रधानमंत्री शाम को असम जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा के दौरान विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 2 नई अमृत भारत वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे।
आज शाम लगभग 6 बजे प्रधानमंत्री गुवाहाटी के अर्जुन भगेश्वर बरुआ खेल परिसर में आयोजित होने वाले पारंपरिक बोरो सांस्कृतिक कार्यक्रम बागरुम्बा द 2026 में भाग लेंगे। इस अवसर पर बोरो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकार एक साथ मिलकर बागरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री आज रात गुवाहाटी स्थित राजकीय अतिथि गृह में ठहरेंगे। कल प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11 बजे नौगांव जिले के कलियाबर में 6,950 करोड़ रूपए से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। यह एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर पशुओं को निर्बोध आवाजाही सुनिश्चित करेगा, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करेगा, सड़क सुरक्षा बढ़ाएगा, यात्रा का समय घटाएगा और बढ़ते यात्री एवं माल परिवहन को सुगम बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री असम यात्रा समाप्त करने से पहले कलियाबर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमीनुल हक जोद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 2 दशक बेहद महत्वपूर्ण होंगे। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में ये बात कही।
The next 2 decades will define India's march towards becoming a Atmanirbhar and Vikshit Bharat by 2047. In this journey, Uttarakhand occupies a position of unique importance. Devbhoomi Uttarakhand has entered a new era of road, rail, air and communication connectivity in the last decade.
उपराष्ट्रपति ने नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक खेती, आयुष, पर्यटन, स्टार्टअप और कौशल विकास के क्षेत्र में राज्य की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार जिले के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जंगल में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम को भेजा गया था। मुठभेड़ आज सुबह तलाश अभियान के दौरान हुई। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनावों में 2,869 सीटों में से 1,425 सीटें जीती हैं। अंतिम परिणाम के अनुसार शिवसेना को 399 सीटें, कांग्रेस को 324, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 167, शिवसेना यूबीटी को 155, एनसीपी शरद पवार गुट को 36, एमएनएस को 13 और बसपा को 6 सीटें मिली हैं।
227 सदस्यों वाले बृहन्मुंबई नगर निगम में बीजेपी ने 89 सीटें जीती और सहयोगी शिवसेना को 29 सीटें मिली, जबकि शिवसेना यूबीटी को 65 और एमएनएस को 6 सीटें मिली। वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 24 सीटें, एआईएमआईएम को 8, एनसीपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और एनसीपी एसपी को केवल 1 सीट मिली। 151 सदस्यों वाले नागपुर नगर निकाय में बीजेपी का दबदबा रहा, उन्हें 102 सीटें मिली जबकि कांग्रेस को केवल 34 सीटें मिली। छत्रपति संभाजी नगर में भी बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी रहा, जबकि एआईएमआईएम को 33 सीटें मिली। सी प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के जनहितैषी शासन के एजेंडे को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच फॉर्म 7 पर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच निर्वाचन आयोग का स्पष्टीकरण आया है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता फॉर्म 7 की कितनी भी प्रतियां जमा कर सकते हैं। आयोग के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा जमा किए जाने वाले फॉर्म की संख्या की कोई सीमा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हिंसा का समर्थन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता असंवैधानिक और हिंसक तरीकों से विशेष गहन प्रशिक्षण को रोकने की कोशिश कर रही हैं।
SIR बंगाल में भी हो रहा है, उसे रोकने की कोशिश गैर संवैधानिक तरीके से नहीं, हिंसा के माध्यम से ममता बनर्जी जिस प्रकार से कर रही है, चुनाव अधिकारी जो BLO कहलाता है वहां सुरक्षित नहीं है। इतना दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि वो मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के।
उत्तर प्रदेश सरकार ने दोहराया है कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे पुनर्निर्माण और पुनर्विकास कार्य के दौरान किसी भी मूर्ति को कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। शहरी विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मणिकर्णिका घाट क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ये कार्य शुरू किए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने भी कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक और निराधार खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग द्वारा ऐसी सभी कलाकृतियों और मूर्तियों को विधिवत संरक्षित किया गया है।
मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि जो वहाँ कलाकृतियां हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियां जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है। और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, इसमें दोबारा से उनको उसी के रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। जो मणिकर्णिका घाट पे मुख्य मंदिर है, वो मसाननाथ भगवान का मंदिर हो या तारकेश्वर महादेव का मंदिर हो, उन सभी मंदिरों को यथावत जैसे अभी है उसी रूप में रखा जाएगा और उनका संरक्षण किया जाएगा।
मारुति सुजुकी गुजरात के खोराज में 35,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक विशाल नया वाहन निर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में आज गांधीनगर में गुजरात सरकार और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बीच निवेश पत्र विनिमय समारोह आयोजित किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए बनाई गई 20 सूत्री शांति योजना के दूसरे चरण का नेतृत्व करने के लिए नवगठित शांति बोर्ड के सदस्यों की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
ये बोर्ड गजा में शासन, क्षेत्रीय सहयोग, पुनर्निर्माण, निवेश, वित्त पोषण और दीर्घकालिक स्थिरता से संबंधित प्रयासों की निगरानी करेगा। प्रमुख सदस्यों में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विदेश के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ट्रंप के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, ट्रंप के करीबी जैरेड कुशनर और अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रोबर्ट ग्रेबियाल शामिल हैं। श्री ट्रंप शांति बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। गजा कार्यकारी बोर्ड में श्री ब्लेयर, श्री कुशनर, श्री विटकॉफ, तुर्की के विदेश मंत्री कान फिदान, कतर के राजनायिक अली अल थवदी और अन्य शामिल होंगे। ये घोषणा अमेरिका की मध्यस्थता से तैयार की गई नई शांति योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ के बाद हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
ईरान में कई हफ्तों तक चले तीव्र सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अब शांति के हालत दिख रहे हैं। पिछले दिनों में भारी सैन्य तैनाती, सामूहिक गिरफ्तारियों और लंबे समय तक इंटरनेट बंद रखने सहित व्यापक सुरक्षा कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन की गतिविधियां स्पष्ट रूप से कम हो गई हैं। मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि इस महीने की शुरुआत में हुई सामूहिक गोलीबारी में 2,000 से 12,000 लोग मारे गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन में पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ आरके जेनामणि ने बताया कि इस महीने के अंत में उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की अत्यधिक संभावना है। डॉ जेनामणि ने कहा कि शीतलहर की स्थिति में सुधार हुआ है और न्यूनतम तापमान में भी मामूली वृद्धि दर्ज की गई है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग से जो अपडेट है, कोहरा का जो कंडीशन है, आज जो मेन सिटी दिल्ली में जो है 200 मीटर विजिबिलिटी आ गया था और कई जगह पर भी डेंस फॉग रिकॉर्ड किया गया है। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेनली तो जैसे हिंडन एयरपोर्ट है, वहाँ भी विजिबिलिटी जीरो चला गया था। अगर तापमान का बात करें तो कोल्ड वेव कंडीशन ऐसे बहुत जगह से कम रिकॉर्ड किया गया है। और अगर तापमान का बात करें तो दिल्ली में 4 से 5 डिग्री का तापमान आज दर्ज किया गया मिनिमम।
जिम्बाब्वे के बुलावेयो में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए का दूसरे मुकाबले में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा से हावड़ा गुवाहाटी के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री आज शाम असम का दौरा करेंगे। 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी ढेर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा संघर्ष समाप्त करने पर अपनी 20 सूत्री शांति योजना के दूसरे चरण का नेतृत्व करने के लिए नए शांति बोर्ड के सदस्यों की घोषणा की। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन में पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।